वेलकम टू अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट। और आज हमारे इस पॉडकास्ट के बहुत ही खास अतिथि हैं संजय राजोरा। संजय राजोरा को मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, संजय राजोरा देश के बहुचर्चित, बहुत ही जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। तो ये उन रेयर कॉमेडियन में से हैं जो पॉलिटिकली और सोशली बहुत अवेयर हैं और अपने आर्ट के थ्रू ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के मुद्दों को उठाते हैं, नॉट ओनली थ्रू हिज कॉमेडी बट ऑल्सो थ्रू हिज राइटिंग, थ्रू सोशल मीडिया। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है चीजों को लेके। सो संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट।
सर थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए, आपने बुलाया।
तो सर आज
तो वही बात होगी ना कि शादी में लोग बुलाते हैं, फिर बराती को बोलते हैं थैंक यू फॉर कमिंग।
तो सर अभी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि आप आ रहे हैं गेस्ट, तो ऑडियंस से मैंने कुछ सवाल लिए थे। तो नॉर्मली ये सेक्शन में एंड में रखता हूँ क्योंकि तीन चार ही क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार ऑडियंस ने झड़ी लगा दी आपसे सवाल पूछने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि
अरे बाप रे, मरवाओगे यार,
इनके सवाल इतने इंटरेस्टिंग है तो इन्हीं से शुरू किया जाए। तो इसमें पहला सवाल ये है कि आपको यूएस छोड़ के इंडिया आने का कोई रिग्रेट है, कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया इज राइट नाउ? एक मिनट, में लिसनर्स को ये बता दूं कि संजय सर पहले यूएस में काम करते थे और यूएस को फिर छोड़ के इंडिया वापस आए।
सर ऐसे देखा जाए तो अमेरिका में लाइफ में कोई खराबी नहीं थी, खूब सारे पैसे थे, कंफर्टेबल लाइफ थी, कोई काम खास भी नहीं था, मतलब मैं इतने सीनियर पोजीशन पे था, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता था और लिबर्टीज थी। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात ये जो समझनी चाहिए वो ये है कि जब आप एक बैकग्राउंड से निकल के आते हो, जब आपने सफरिंग देखी होती है, जब आपने इनजस्टिस देखा होता है, तो उसके बाद जब आप ऐसी जगह पे सडनली पहुंच जाते हो जहां पे नोबडी रिलेट्स टू दैट सफरिंग एंड दैट इनजस्टिस, देन यू फील यार आई वांट टू गो बैक एंड आई वांट टू मेक दैट प्लेस दैट आई कम फ्रॉम, ऐसा ही बनाना चाहता हूँ उसको, जैसे कि ये है ना कि मतलब कितना आप अपने यूटोपिया में रहोगे कि क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ ठीक होगी है इसलिए भाड़ में जाए सब। वो मेरे को लगा कि यार मुझे हिंदुस्तान से बहुत बहुत प्यार था, मुझे हिंदुस्तान के आइडिया से प्यार था सर। मतलब शिकायतें भी बहुत थी, वो हम सबको होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे ये था कि जुल्म के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ बोलना और हक के लिए बोलना और लड़ना जरूरी है, जो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर तो नहीं कर सकता था। अमेरिका में बैठ के वहां बैठ के तो मैं जाता ना वहां पे टेक्सास में, वो क्या हुआ था, वो
कैसीनो
नहीं, हाउडी मोडी में जाता ना वहां पे। हाँ
तो मेरा एक्चुअली दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था कि जो मैं खुद भी सोचता रहता हूँ सवाल के बारे में कि आर्टिस्ट किसी सोसाइटी में चेंज लाने में कितना वो मदद कर सकते हैं या फिर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करने में, क्या वो कुछ चेंज कर पाते हैं या फिर ये चीज़ें जो होती है वो हमारे ग्रुप्स में या फिर हमारे जैसे सोचने वाले जो हमारी आइडियोलॉजी के लोग होते हैं उन्हीं के बीच सीमित रह जाती है, और इसका स्कोप कितना एक आर्टिस्ट कितना चेंज ला सकता है अगर वो चाहे तो?
यार अनुराग जी, मैं तो अपने पर्सनल तजुर्बे तो बोल सकता हूँ कि पहली बात तो ये, मैं अपने आप को इतना कोई आर्टिस्ट नहीं मानता क्योंकि मेरे में हुनर कुछ है नहीं, तो मैं वो खाली जो सच दिखता है उसको बोलता हूँ। कुछ लोगों को उसमें हंसी आती है, वो बोलते हैं, उन्होंने वो उसको क्वालिफाई कर देते हैं कि ये कॉमिक है। लेकिन मेरे पर्सनल तजुर्बे से मेरे को ये समझ में आया कि बात ये है कि पहली बात तो कोई भी आर्टिस्ट अगर ये सोचे कि वो कोई चेंज लेके आएगा तो ये उसकी खुशफहमी है, गलत फहमी है, जो भी बोल लो आप। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सवाल ये नहीं है कि आप चेंज लेके आ रहे हो और कोई बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इसकी स्टैटिस्टिक्स तो आप रख भी नहीं सकते हो और नहीं बदल रहा है आपके कहने से। सवाल ये है कि जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है, The idea of justice, that question has to be kept alive. उसके बारे में बार बार उसको पोक करते रहो। आर्टिस्ट का काम मेरे मेरे को जो समझ में आया है, मेरे से भी बड़े बड़े बहुत हैं, मेरे को जो समझ में आया है उनका ये है कि वो क्वेश्चन को पोक करते। अब जैसे आप अपने ये जो वीडियोस बनाते हो, यो यो सर और एक रोनी है, एक रोनी का बाप है मल्होत्रा, आप कर क्या रहे हो? आप पोक कर रहे हो। मुझे मेरी समझ से नहीं लगता कि आपको ये लगे कि मैंने ये वीडियो बना दिया अब इसमें कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पोकिंग इनटू दैट सिस्टम व्हिच इज फुल ऑफ इनजस्टिस। आर्टिस्ट का काम पोक करना ही, अगर आर्टिस्ट भी पोक करना बंद कर दे तो सवाल भी मर जाएगा और उसके बाद सवाल के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। और 40 साल 50 साल के बाद एक तो ये हमें लालची होना छोड़ना चाहिए ना कि हमारे टाइम पे चेंज हो जाए। चेंज तो कभी भी हो सकता है, मतलब हमारी उम्र, हम तो उम्र खत्म हो जाएगी उसके बाद चेंज होगा, लेकिन अगर हमने सवाल जिंदा रखा तभी तो चेंज होगा ना। मतलब आर्टिस्ट का काम सवाल को जिंदा रखना है।
तो इसी का एक एक्सटेंशन ये था कि आज के टाइम में किसी भी तरीके, जैसे कॉमेडी भी कर रहे हैं या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑफेंस का जो सीन है वो राइट विंगर तो करते ही करते हैं, ऑफेंड लेते ही हैं, बट हमारे मतलब लिबरल सेक्शन भी काफी चीजों को तोड़ मरोड़ के, ये भी देखा है मैंने कि वो एक कुछ क्लिप निकाल के उसका भी उनको भी ऑफेंड लेने की बहुत आदत है। तो मेरा कुल मिला के कहना, एज ए सोसाइटी पूरी ऑफेंस बहुत जल्दी ले लेती है, स्पेशली जो ऑनलाइन कल्चर है, मतलब जिस तरह का भी कल्चर है ऑनलाइन के अंदर, तो उसके अंदर भी, तो इस सिचुएशन में एक्सप्रेशन एज एन आर्टिस्ट या फिर एज अ कॉमिक, आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि कुछ बोलना, जबकि अगर आपके इंटेंशन भी ठीक है तो भी उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है?
हाँ सर, ये जो मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो, ये जो वो कल्चर चला हुआ है, हाँ, इसे, हाँ, कैंसिल पेलने का, उसे कैंसिल पेलने का, भाड़ में जाओ यार, तुम लोग भाड़ में जाओ। असली राइट विंग का तो एक सिंपल सा बेवकूफ है और उनको एक ही चीज पता है, ये जो लिबरल ब्रिगेड है जो वो बनना चाह रहे हैं। और मैंने सर फेसबुक पे ये देखा है, I don't know whether I told you about this or not, but Facebook पे मैंने ये देखा, there was some woman on Facebook, वो ये लिख रही थी Facebook पे, पाकिस्तान में सरदारों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इंडिया के सरदार कुछ नहीं बोले, something to that order, मैंने कहा what? पाकिस्तान में सरदारों से ज्यादा नाइंसाफी इंडिया में हो रही है और पाकिस्तान में सरदारों से ज्यादा नाइंसाफी हजारा के साथ हो रही है और जो बलोच के साथ हो रही है, शिया के साथ हो रही है। आपने पूरी जानकारी लिखनी नहीं है और आपने देखनी नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपने सब बोल दिया। असल बात यह है सर, ये बात बिल्कुल जैसे कि राइट विंग का तो सर इतना डर नहीं लगता, उनको डेथ थ्रेट देने खाली।
हाँ, उनका एक पैटर्न है जो हमें पता है।
हाँ, डेथ थ्रेट देना है, माँ बहन की गालियां बखनी है बस आपको। हाँ, उनका एक मेरे ख्याल से अगर आप उनके डायलॉग्स लिख लो तो वो प्रिंट आउट में दूसरा पेज भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो लिबरल है वो है, इसको इसी बात पे प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई तुम्हारा जो व्हाट्सएप के मैसेज में तुम्हें थम्स अप किसी को भेजा वो ब्राउन क्यों नहीं है और हमें तो पता भी नहीं यार। अब वो दिखा फोन में और उसको दबाया, टिपका दिया कि कल मिलेंगे, मैंने कहा हाँ थम्स अप, वो लगे नहीं ये ब्राउन क्यों नहीं है। अरे यार की कैसी बातें हैं यार। यार एक जो लिबरल माइंड सेट का एक जो द फंडामेंटल आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इज कि यू क्वेश्चन एवरीथिंग और जो रिग्रेसिव है उसको डिसमिस करो और जो प्रोग्रेसिव है उसको भी क्वेश्चन करके बेटर बनाओ। ये थोड़ी है कि आप रिग्रेसिव को भी डिसमिस करो और प्रोग्रेसिव को भी ज्यादा डिसमिस करो, फिर आप करोगे क्या?
तो वो एंड में बचेगा कौन, वो भी मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे प्योर
एंड में बचेगा। एंड में बचेगा क्या? ये जो सोशल मीडिया ने एक अलग किस्म का ब्राह्मणवाद पैदा कर दिया है।
हाँ, प्योरिटी का।
अब देखो ये जो ब्राह्मणवाद सोशल मीडिया पे पैदा हुआ है ना, पीपल हु आर नॉट इवन remotely connected to Kashmiris, people who are not even remotely connected to Dalits. वो मतलब आके वो कैंसिल कर रहे हैं दलित इश्यूज के ऊपर. मैं मानता हूं कि यार आप एक बात मान के अगर दलित मूवमेंट में कहीं पे मैं जाके बोल रहा हूं तो मैं आई कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द वॉइस. आई हैव टू स्टैंड बिहाइंड.
बिल्कुल
ठीक है. उस बात के ऊपर आप किसी को बोलोगे कोई किसी ने जबरदस्ती आके ज्यादा बोल दिया, बात समझ में आती है. लेकिन आप एक मौका ढूंढते हो किसी के एक ट्वीट में, किसी के एक सेंटेंस में कुछ भी निकाल के उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रख के फेल दो. मैं तो कहता हूँ सर बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि ऑल दिस पीपल हु डू दैट ना, आई गिव अ फ्लाइंग फक.
नहीं ये एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इसमें कुछ बेटर बनाने की या फिर किसी को ठीक करके कुछ करने की बजाय ये है कि मेरी मोरालिटी तुमसे ऊपर है, आई एम मोर प्योर. और प्योर का कंसेप्ट जो होता है उससे मुझे दिक्कत है क्योंकि ब्राह्मणिकल कंसेप्ट
वही तो प्रॉब्लम है. वही तो प्रॉब्लम है कि मेरा मतलब माय प्योरिटी. चलो मैं मेरा नाम हो सकता है कि भाई मैं आदित्य रॉय कपूर हूं, मतलब जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, और नथिंग टू विद द रियल आदित्य रॉय कपूर. फिर मैं आके मॉरल लेक्चर पे लू लोगों के, तुमने दलित के लिए ये नहीं किया, तुमने मुसलमान के लिए ये नहीं किया, तुमने जो है फलाने के लिए ये नहीं किया. मैं खुद जानता हूँ यार, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सबसे ज्यादा ऑपरेशन तो इन्होंने किया है.
मैंने आज ही डाला था जाट्स आर बाउंसर्स ऑफ हिंदुइज्म.
बात तो ठीक.
तो लठैत तो की तरह बचा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो.
नहीं हिंदुइज्म की प्रॉब्लम ये है सर कि इंडिया का जो ये जो मैं पहले भी कई दफा बोला हुआ है कि इंडिया का जो ये हिंदू और मुसलमान अपर कास्ट हिंदू मुसलमान चलाते रहते ना गंगा जमनी तहजीब, ये अपर कास्ट ब्राह्मणिकल आइडिया है इंडिया. लोग पूछते हैं कि भाई अब लोग बोल रहे हैं आके अब 2021 हो रखा है और जो कुछ हो रहा है तो अब सबको लग रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी मर रही है. हमारी वॉइसिस को दबाया जा रहा है, हमें बिना बात पे जेल भेजा जा रहा है, हमें बेमतलब पुलिस कूट रही है. अरे भाई जाके पूछो उस आदिवासी और दलित से जिसकी जिंदगी में यही होता रहा है आजादी से पहले भी आजादी के बाद भी, काहे कि गंगा जमनी तहजीब करते हो मेरे सामने.
तो इसी में एक सवाल किसी ने पूछा है रम कोहल करके किसी ने कि आप मेन स्ट्रीम कॉमेडी से इतना डिस्टेंट इतना दूर क्यों रहते हैं.
अनुराग जी इसका जवाब मेरे मेरे बजाय ना आप दो.
मुझे तो पता ही है बट आप बताएं इंतजार ठीक रहेगा.
नहीं नहीं क्योंकि मुझे और आपको एक ही बात पता है.
चलो ठीक है.
क्यों रहते हैं दूर बताओ आप अनुराग जी.
मेनस्ट्रीम कॉमेडी से तो मैं खुद भी खुद का ही बता देता हूँ कि खुद भी दूर ही रहता हूँ. मेरे को भी लोग बहुत बोलते हैं कि आप स्टैंड अप में जाओ, ये क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे क्यों बनाते रहते हो, स्टैंड अप में जाओगे थोड़े पैसे भी मिलेंगे, अमीर भी होगे, कुछ करियर भी बनेगा आपका. लेकिन मैं दूर रहता हूँ फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे खासे पैसे भी हैं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो उसको कल्चर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं करता कि एक इस तरह के कल्चर का भी हिस्सा बनूं जो एटलीस्ट इंडिया में जिस तरह का चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो चल रहा है, जो जिसमें कि बिल्कुल ही फूवर्ड और कुछ एक तो बिल्कुल भी ना तो फनी है ना उसमें कुछ भी सोशल या पॉलिटिकल एंगल को आप ठीक से खड़ा कर रहे हो, तो कुछ उसमें ना तो नुआंसेस दिखते, तो मुझे उसका पॉइंट ही नहीं समझ आता है कि उसका पॉइंट क्या है. मुझे आज तक स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरह की चल रही है इंडिया में उसका मुझे कुछ पॉइंट समझ ही नहीं आता, ना तो वो इंटरटेनिंग है और ना ही वो पॉलिटिकली कुछ इंटरेस्टिंग है या फिर सोशली कुछ चैलेंज कर रही है. तो इसीलिए मुझे इस फॉर्मेट से ही मैंने कहा मैं दूर ही रहूंगा अभी इंस्टा पे. ठीक है कुछ जितना भी चल रहा है इसी के थ्रू कहूंगा ताकि मैं एटलीस्ट जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ उसको तो एटलीस्ट फ्रीली एक्सप्रेस कर दूं. और दूसरी बात ये भी है कि जो आजकल का जिस तरह से माहौल है ऑफेंस का और ये, तो जो पॉलिटिकल कॉमेडी तो और भी डिफिकल्ट भी हो चुकी है कि कोई भी चीज को अब भी क्या निकालेंगे क्या करेंगे.
एक्चुअली अनुराग मैं आपको बताऊं आपकी सारी बात ना बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसी कॉमेडी करने का क्या फायदा जिसका कोई सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ना हो.
बिल्कुल
जहां पे आप एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को पंचअप नहीं कर रहे हो. हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी भी जो है ना एक तरीके से वो बन गया है कि जैसे बोलते थे ना पहले कि भाई फैशन डिजाइन आर्किटेक्ट मतलब जो एक पर्टिकुलर तबके के लोग ही वो कर सकते हैं,
कॉल सेंटर वाला सीन चला हुआ अभी तो।
हाँ तो कोई भी आए कोई भी कर ले कोई भी कुछ भी बोल ले, और ज्यादातर लोग वही आ रहे हैं जिनका जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग, जिन्होंने मैं बोल रहा हूँ उनसे पूछो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में फर्क क्या, उन्हें ये मालूम नहीं होगा। तो वो बात आपकी बिल्कुल 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 ठीक है कि अगर सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है और वो पॉलिटिकली मेरे को मतलब हिट नहीं कर रहे तो मैं खुद नहीं जाऊंगा बोलने के लिए या देखने के लिए भी नहीं जाऊंगा। ऐसा तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है ये। लेकिन एक बात है कि आप जैसे लोग अगर ये बोलोगे कि मैं खाली यहीं तक लिमिटेड हूं मैं उस स्पेस में घुसूंगा इन्हें, तो आप एक्चुअली स्पेस कंसीड कर रहे हो इन्हीं लंड फकीरों को। तो आप वो स्पेस कंसीड कर दोगे, ले जाएंगे यही, और उसके बाद ये अपना वही इट विल बिकम दैट बॉलीवुड माफिया के हम कॉमेडी करते हैं हमें आसान है। कॉमिक का सबसे पहला काम लोग बोलते हैं ना, आपके फेवरेट कॉमिक भी बोलते हैं, आपको तो पता ही है किन की बात कर रहा हूं मैं। वो बोलते ही हैं कि नहीं कॉमिक का सबसे पहला काम है हंसाना। नहीं, और ये कॉमिक का सबसे पहला काम हंसाना नहीं है, कॉमिक का सबसे पहला काम है कि सरकार से सवाल पूछना। और ये जो आपने बोला ना कि आजकल पॉलिटिकल माहौल ऐसा हो गया है कि कॉमेडी करनी
और भी मुश्किल है।
सबसे आसान वक्त ये है, सबसे आसान वक्त ये है कॉमेडी करने का, बस आपको बहादुर होना पड़ेगा, और बहादुर कोई होना नहीं चाहता है। अपने घर में सबने राणा प्रताप की फोटो लगा रखी होंगी और वीरता की कहानियां सुना के रखी होंगी, बहादुर नहीं होना किसी ने।
एक सवाल पूछा है वरुण ने कि प्लीज आस्क संजय सर अबाउट बॉलीवुड करण जौहर एकता कपूर मिडिल क्लास कल्चर एंड आर एग्रेसिव कस्टम, पॉपुलर कल्चर के बारे में एक तरह से, कि मूवीज का आपने शायद एक पोस्ट भी लिखा था ना, एक बी आर चोपड़ा पे आपने लिखा था रिसेंटली महाभारत का किस।
नहीं मैंने उस पे करण जौहर पे।
हाँ करण जौहर पे, तो उसी पे वो था कि इनका किस तरह से प्रभाव पड़ा, क्या आप पे भी पड़ा गया इसका, मतलब बॉलीवुड का जो मेन स्ट्रीम जिस तरह की फिल्म्स हैं और जिस तरह का कल्चर है एक यूथ के टाइम पे या फिर किसी टाइम पे, कि आप भी उनसे काफी प्रभावित रहे इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बचपन में मैं बहुत देखता था महाभारत और ये रामायण, तो उसका मेरे दिमाग में एक प्रभाव बहुत स्ट्रांग पड़ा कि इस तरह की चीजें होती हैं, ये होती हैं वो। खैर धीरे धीरे समझ में आया कि किस तरह से क्या है। तो या फिर बॉलीवुड मूवीज का भी लव किस तरह से, लव का डेफिनेशन जैसे बॉलीवुड ही हमें सिखाता है कल्चर का फैशन का, तो उस पे भी आप एक थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं।
प्रकाश तो क्या डालूंगा सर, लेकिन ये बात तो जाहिर है हमको दिख ही रही है कि जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, इंडिया राइट नाउ इज लिविंग अप एन अपर कास्ट ब्राह्मणिकल आइडिया, एंड नाउ अपर कास्ट ब्राह्मणिकल आइडिया डजंट हैव अ क्लू अबाउट द वर्ल्ड के आगे एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, और जहां पे आपको जस्टिस की बात करनी उनको तो ये पता, उनको ऑपरेशन पता है बस।
बिल्कुल
ठीक है, तो उसने वही करना है। आप ये मेरे को बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में, चलो हम आजादी के बाद की बात कर लेते हैं, कब ये ब्राह्मणिकल आइडिया को क्वेश्चन किया गया? उसी आइडिया का एक्सटेंशन इंडिया का लिबरल बोलते हैं 90s में ना लिबरलाइजेशन हो गया, कौन लिबरल हुआ? ब्राह्मण बनिए, क्या मेरे मुल्क के दलित और आदिवासी को वो लिबरलिज्म पहुंचा? क्या जो वो खैरलान जी केस था वो इसने कराया था? सवाल ये, आज मेरे को गुस्सा इसी बात पे आता है कि आज सब बड़े बड़े मतलब 20-22-24 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के लोग स्पेशली यंगस्टर्स लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। डेमोक्रेसी थी कहां भाई? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैमाना होता है सबसे कमजोर के पास कितने हक हैं। क्या आपने कभी देखा, आप अनुराग आप ही बता दो मेरे को, क्या थे कभी कमजोर के पास आग?
नहीं कभी भी नहीं था।
ये जो ये जो अभी ये जो हिंदू मुसलमान वाला ये नैरेटिव बनाया हुआ है ना, एक्चुअली ये हिंदू मुसलमान वाला है नहीं। मैं आपको
हाँ
बताऊं,
हाँ
ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है,
हाँ
इनको अदराइजेशन प्रोजेक्ट के माहिर हैं।
हाँ
और सबसे सिंपल अदराइज करना किसको है? मुसलमान को, क्योंकि विजिबल है।
विजिबल और
उसके
इजी
बाद
है
मेरे को
उनके लिए
ये
बहुत।
बता दो कि उन्होंने किसको अदराइज नहीं किया, किसको छोड़ दिया। एंड दैट इज व्हाट ब्राह्मणिज्म इज।
इवन
जिन्ना
अभी
क्यों
रिसेंट
क्यों अलग हुआ था कांग्रेस से? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से क्यों अलग हुआ था? क्योंकि उसको दिख गया था, कि ये तो मतलब ब्राह्मणिकल आईडी जिन्ना खुद थी इस टाइम, मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी नहीं है वो। उसने बोला था कि जो मुसलमान इंडिया में रह जाएगा ना, उसको जिंदगी भर अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। आज हमने जिन्ना को राइट प्रूव कर दिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने जिन्ना को रॉन्ग प्रूव कर दिया। वो
आजकल तो सभी को प्रूव करना है, सिख को भी प्रूव करना है, सबको प्रूव करना है जिसने
हाँ,
कुछ बोल दिया।
नहीं, अगर आप ये देखें ना, ये जो प्रूफ प्रूफ जो मांगते हैं ना, पता है कौन मांगता है? अगर उनके सरनेम देख लो आप, गोयल, मित्तल,
मिश्रा
अग्रवाल, जैन, दीक्षित और शर्मा और पांडे और द्विवेदी, त्रिवेदी,
चतुर्वेदी
चतुर्वेदी, ये मांग रहे होते हैं प्रूफ।
हाँ, जो खुद माइनॉरिटी में बाय द वे।
खुद माइनॉरिटी में ही है, इनकी परसेंट तो 10 तक तो पहुंच नहीं रही, लेकिन इनको डर लग रहा है कि मुसलमान एक दिन वो कर देंगे। और बात वो
हाँ
ये कास्टिज्म तो सर मुसलमानों में भी है, सब कॉन्टिनेंट के, वो तो आपको
बिल्कुल
पता ही
पता।
है।
तो इसमें आपने एथिज्म वाला एक बात की थी, आप पब्लिकली आइडेंटिफाई एज एथिस्ट करते हैं अपने आप को, राइट?
हाँ सर,
तो इसमें ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ एथिज्म में?
दो तो दो वो हैं। एक पहली चीज तो, व्हेन आई वाज वेरी यंग, सो व्हेन यू सी इनजस्टिस अराउंड यू, लाइक आई वाज 5 or 6 year old, ओके, अपने गांव में मैं था, वहां पे मैंने देखा कि किसी एक शादी हो रखी थी सर, ठीक है। तो शादी में ना, वो पहले गांव में ना, वो नीचे बैठ के वो पत्थर लगाते थे ना, नीचे बैठ के सब लोग खाते थे। तो फिर इवेंचुअली वो पत्थर इकट्ठे करके कोई एक जगह पे फेंक देता है, उसको कूड़ी बोलते हैं। एंड सडनली आई सी के यंग मैन मीट बीटिंग एन ओल्ड मैन ओवर देयर।
अच्छा
सो आई वाज अ किड, आई वेंट देयर एंड आई मुझे बाद में पता चला कि ये दलित था जो उस कूड़े में से खा रहा था। और जाटों को इस बात पे होगी तू आया कैसे। मैंने सोचा वहां पे यार कि गॉड ने बनाए और फिर वो ये बनाया है, तो ऐसे गॉड जाए भाड़ में। ये तो रही सर एक सोशियोलॉजिकल कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद ना मैं लाइफ में ना, मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स समझ गया। फिजिक्स समझ में आते ही मैथमेटिक्स, आप तो खुद इंजीनियरिंग पढ़े हो, मैं बड़ी जल्दी ना लाइफ में फाइनमैन और स्टीवन हॉकिंग पकड़ लिए थे मैंने। और उसके बाद आइंस्टाइन एंड डिराक एंड श्रोडिंगर, लुई डी बोर्गलो, ये सब पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की जो पूरी रिवोल्यूशन थी ना, उन्होंने पूरे अपनी नस नस में भर के उसके मुझे सब समझ में आ गया कि ये जो गॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इट इज अ फिल्म, इट इज अ फिल्म मेड बाय अ लार्जर बॉलीवुड। उसके अलावा ये कुछ नहीं है। और आप गॉड के कॉन्सेप्ट में भी ये देखो कि अगर आपको मैं गॉड बना दूं, ठीक है अनुराग जी, मेरे को बताओ, और आपको मैं आप गॉड को भी, गॉड किसी ने तो बनाया होगा, उसका गॉड कौन है? लॉजिकल लॉजिकल रैशनैलिटी डोंट गो टुगेदर लॉजिक एंड रैशनैलिटी डोंट गो टुगेदर विद रिलीजन.
मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था एक एथिस्ट माइंड से पूछूं एक रिलीजन चलो काफी सारी बुराइयां तो हैं इसमें लेकिन फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को हार्म नहीं करते एक पर्सनल अपना फेथ में रखते हैं और उससे रिलीजन के थ्रू एक तरह से लाइफ को जीने का कुछ ना कुछ उनके अंदर एक होप बोल दीजिए होप रह जाती है कि कोई ना कोई चीज का टेक केयर कर रहा है एक मोरालिटी है जो देख रहा है वो किसी को हार्म मैं उनकी बात करूं किसी को हार्म नहीं पहुंचाते एक पर्सनल उसमें वो करते हैं या फिर किसी तरह का फेथ है. कई लोग होते हैं जो रिलीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते थोड़े स्पिरिचुअल उसमें होते तो वो एक जीने की होप किसी ना किसी बाहरी एनर्जी से या फिर किसी ना किसी शक्ति से एक एब्स्ट्रैक्ट चीज से वो जोड़ देते हैं चाहे रिलीजियस वो आइडल या सिंबल कुछ ना हो उसके अंदर. तो उस तरह से एथिस्ट का जो माइंड है उसका होप और विल टू लिव फिर किस पॉइंट से आता है?
सर मेरा तो जस्टिस है सर. और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हो कि जो अपने से मतलब रखता है किसी से पंगे नहीं लेता पहली बात तो रिलीजन का एक सिंपल सा आइडिया है कि आई गो बैक टू 1992 फॉर एग्जांपल जब बाबरी मस्जिद गिरा था. ठीक है हमारे ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है घरों में बैठ के लिविंग रूम्स में अंकल आंटी आके और बैठ के चाय पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं यार वो मस्जिद तो गिरना चाहिए और जब वो मस्जिद गिरा तो इनमें से कोई भी नहीं क्या गिरा. ठीक है वो मस्जिद गिराया किसने जिसके पास कुछ भी नहीं था. लेकिन मॉरल लेजिटिमेसी कहां से मिली इस लिविंग रूम से. ठीक है और ये ही वो लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हम किसी को थोड़ी वो कहते हैं ये तो हमारा पर्सनल वो है हमको वो मिलता है जीने का इसमें ये मिलता है फलाना मिलता है डिबका मिलता है. और दूसरी बात ये है कि ये इतना प्रिविलेज्ड आइडिया है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल विपाशना है जैसे. ठीक है आपने कभी देखा है रिक्शे वाले ने पोस्ट किया है या वो रिक्शे वाला कभी किया विपाशना करने. ये मजदूर जो काम करता है. रिलीजन इज लाइक द सेम थिंग व्हेन यू से कि हार्ड वर्क पेज. जून की दोपहर में जयपुर में कोई ईंटे 16 फ्लोर ऊपर सर पर रख के चढ़ा रहा है उसको जाके बोलो हार्ड वर्क पेज वो थप्पड़ नहीं मारेगा आपको.
काम कर फल की चिंता मत कर.
बिल्कुल फल की चिंता मत कर. और जो जो अमीर लोग और अमीर हमारे यहाँ ज्यादातर तो क्या है आपको पता है कौन लोग है? हाँ. उनको ना स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी समझ में आती है. उनको विपाशना भी बड़ी समझ में आती है कि नहीं नहीं वी आर ऑल स्पिरिचुअल आई नीड सम एनर्जी. ओ भाई नहीं तुम अफोर्ड कर सकते हो. यू कैन अफोर्ड योर रिलीजन यू कैन अफोर्ड योर स्पिरिचुअलिटी एंड दैट्स व्हाई यू कैन डू इट.
एक ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई संजय राजोरा इज एंग्री ऑल द टाइम वो चिल कैसे करते हैं जीवन में. ये आपसे काफी पूछा होगा खैर लोगों ने कि आपकी इमेज एक बहुत एंग्री मैन की है.
आप खुद बताओ अनुराग कि इस मुआशरे में आप, हाँ. आप आपके अंदर गुस्सा नहीं है क्या?
हाँ गुस्सा तो है.
गुस्सा है ना आपके अंदर?
हाँ.
आप अगर अपना गुस्सा दिखाओगे
हाँ.
तो बोलेंगे कि यार हो तो गया यार इतना तो कर दिया.
हाँ, हाँ.
फिर भी गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं गुस्सा होता हूँ मैं क्योंकि अपर कास्ट हूँ मैं गुस्सा होता हूँ तो लगता है ये एंग्री क्यों है. दलित गुस्सा होता है तो उनको लगता है कि यार कर तो दिया रिजर्वेशन इतना सारा यार.
बिल्कुल.
और लेकिन गुस्सा है ना इंसाफी के खिलाफ गुस्सा है. और मैं चिल कैसे करता हूँ?
Yeah, what is that thing which makes you happy or less irritated with life?
Sir, मुझे तो किताबें ही मतलब खुश करती हैं. मैं पढ़ता रहता हूँ सर ज्यादातर तो. पढ़ता रहता हूँ कुछ संगीत सुन लेता हूँ और कुछ मेरे चुनिंदा दोस्त हैं वो उनके साथ थोड़ा सा मतलब वक्त बिता लेता हूँ. मतलब घर से बाहर ज्यादा निकलता नहीं हूँ. किताबें हाँ मतलब नॉलेज इज द ओनली सॉल्यूशन टू एनी फॉर्म ऑफ बिगटरी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ूं क्योंकि मैं भी कोई ऐसे बहुत सुप्रीम बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ कि दो स्कूल में पढ़ाऊँ और मेरी फैमिली बड़ी जो है एक कास्ट प्रिविलेज थी मेरे पास और दूसरी मेल प्रिविलेज. गरीब होने के बावजूद भी वो प्रिविलेज थी और उसको मेरे को फायदा भी मिला है सर। मेरे को फायदा इस तरह से मिला, यू हैव एक्सेस टू सर्टेन सिस्टम्स विच कुड बी एज सिंपल एज दिस के तुम्हें फला स्कूल में जाना है और वो आपका बैकग्राउंड क्या है और फलाना क्या है, ये सब चीजें आती हैं। तो मेरा वो प्रिविलेज था। ये तो बात सच है सर कि मेरे को एक मेल अपर कास्ट प्रिविलेज, और अब तो आज की डेट में तो हिंदू, लेकिन उस वक्त तो नहीं था इतना, वो तो है सर, वो मेरे को मिला है। और कोई भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव इंसान होगा जिसके जो मिरर रखता होगा, वो अपनी प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करेगा तो गुस्सा होगा ही। एंड स्पेशली व्हेन यू बिलीव इन जस्टिस, इंसाफ हुआ कहाँ इस मुल्क में सर? कब इंसाफ हुआ, किस किस मसले में, किस मुद्दे पे इंसाफ हुआ बताएं तो सही, तब तो कम तो गुस्सा करना बंद करें।
इसमें एक शुभ्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा लाइट क्वेश्चन है ये, कि सिंगलहुड पे आपका क्या कमेंट है, बैचलर लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स?
मुझे क्या बता सर, शुभरा जी अपना जाना है यार, मैं इसमें क्या करूं।
ये एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि इंटरनेट पे जिस तरह का डिस्कशन है या फिर जो भी डिस्कोर्स चला हुआ है अलग अलग तरह का, तो उसका कुछ इम्पैक्ट कुछ हो सकता है कि एज अ एक्टिविस्ट आर्टिस्ट हमको नुक्कड़ पे या फिर लोगों के बीच जाके हमें ज्यादा बातें करनी चाहिए एज कम्पेयर टू ऑनलाइन डिस्कोर्स जिसका कि कोई 1% भी नहीं है और इतना सीरियसली हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं सारा दिन ऑनलाइन, इसको तोड़ दिया उसको तोड़ दिया, तो वो उस डिस्कोर्स का कुछ आपको लगता है कुछ कुछ मतलब निकलता है उस डिस्कोर्स का?
नहीं अनुराग भाई, मैं ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, जहां तक मेरे को याद है, कि चाहे आप ऑनलाइन कर लो डिस्कॉर्ड, चाहे ऑफलाइन कर लो, असली जो ड्रैगन है ना वो आपके घर में बैठा हुआ है, वहां पे करते हो क्या?
बट
क्या
उनको
आप
आप फैमिली को कैसे चैलेंज किया जाए, कोई अपर कास्ट से है और उनकी फैमिली बड़ी रिग्रेसिव कास्टिस्ट और ख्याल वाली है, तो उसको कैसे, कोई कैसे चैलेंज कर सकता है उसको?
देखो, एक सिंपल सी बात है, आपने बोला किसी की फैमिली अपर कास्ट रिग्रेसिव है, उसको उसको नहीं पता वो उसे कैसे चैलेंज करे, ठीक है? फिर वो बाहर जाके क्यों शोर मचाता है कि भाई डाउन विद मोदी,
मोदी,
वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट राइट्स एंड
ट्रू.
एंड हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रहा है, तो बाहर क्यों बोल रहा है जाके? पहले घर में शुरू करना।
बट लोग एलिनिएशन के डर से वो नहीं करते कि पूरा दिन लड़ाई होगी और पेरेंट्स को समझ नहीं आने वाली ये बातें,
हाँ, तो
क्योंकि
लड़ाई तो
उनकी
बाहर जाके
रिजिड है उनकी
बा
थॉट.
तो सर वही तो है ना कि हाँ, वो पेरेंट्स के थॉट रिजिड है, उनको चेंज नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स ही तो गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं,
या फिर ये हाँ पेरेंट्स से ही सोसाइटी बनी हुई है पूरी.
उन्हीं से बनी हुई है। अगर आपने उनसे असल में झगड़ा तो वहां पे है कि वो रिजिड है, तो रिजिडिटी से ही तो लड़ना है। और अगर आपको ये लगता है कि भैया आपके पेरेंट्स रिजिड है, कास्टिस्ट है, रिग्रेसिव है, तो फिर और उनको कुछ नहीं बोल सकते, तो बाहर निकल के अगर आए ना जंतर मंतर पे, किस दिन नारे लगाए, थप्पड़ लगाऊंगा मैं घुमा के, और शुभ्रा जी को सॉरी उनको बुरा लगा होगा कि मैंने उनके मैसेज का ठीक से जवाब नहीं दिया। मैं उनको बोलता हूँ कि बैचलरहुड सिंगलहुड का प्रोज एंड कॉन्स, कौन क्या होता है सर, कौन नेगेटिव होता है ना,
हाँ नेगेटिव नेगेटिव.
हाँ, तो कौन कुछ नहीं है, सब प्रोज ही है।
शायद ज्यादा फ्रीडम है कुछ
नहीं,
भी
खुला
करो.
कान नंगा नहा बंदा और क्या करे। और एक तो ये ना कि बैचलर रूट से लोग ये समझते हैं कि भैया इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, तो के मतलब बीवी बच्चे नहीं है तो फिर मतलब कुछ भी नहीं है इसकी जिंदगी में। नहीं यार, मतलब आपका बोलना लोगों के लिए, दूसरों के लिए, और आप अपनी बिल्डिंग के गार्ड से मिलना, उससे गले मिलना, उसके साथ बैठ के चाय पीना या एक विस्की का पैग लगा लेना उसके साथ, इट इज रिवॉर्डिंग, मच मोर रिवॉर्डिंग देन हैविंग किड्स हु आर इडियट्स। I hope कि शुभ्रा जी ने बुरा ना माना और हमारे क्योंकि गालियां तो मेरे को भी पड़ेंगी और आपको भी पड़ेंगी, ठीक है?
ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जनरल सा कि can we expect a new ऐसी तैसी democracy tour anytime this year or the next?
अभी तो सर कोई प्लान नहीं है क्योंकि आपको पता ही ऑडिटोरियम में लोग आने अलाउड नहीं है, तो कैसे करेंगे?
इसका आइडिया इस कहां से आया? बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी का आइडिया आपने कहां, किस तरह से आया कि ऐसे ही एक परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस टूर का?
यार वही बात है ना अनुराग, जो हम पहले कर रहे थे कि अगर, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आपने अगर ये डिसाइड किया कि मेरे को स्पेस में घुसना ही नहीं है, तो एक्चुअली यू आर कंसीडिंग स्पेस। वही बात मैं और वरुण दोस्त थे काफी पुराने, हम भी यही बात करते रहते थे कि हम लोगों ने कंसीड कर दिया तो फिर इस पूरे स्पेस को कैप्चर कर लिया जाएगा अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट एलीट के द्वारा। हाँ, तो हम बात करते रहते थे और राहुल और मैं पुराने दोस्त थे, वरुण और राहुल कभी मिले नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन वरुण के गाने पे इंडियन ओशन ने कंपोज किया था एंड समहाउ इट जस्ट हैपन के 2014 में हम तीनों को टाइम मिल गया करने का, तो हमने सोचा चलो एक शो करते हैं। फिर वो हो गया वो शो, वो सर वो अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान।
बट ऐसा लाइव शो में कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऑडियंस मेंबर बड़े पॉलिटिकल जोक से कुछ ऑफेंड हो गए और लड़ाई झगड़ा किसी तरह का?
लाइव शो में होता पता है क्या है कि जो लोग, एक तो ये जो मॉब है ना, इनके पास पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए कि महंगा टिकट लेके आए, और ये बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करते हैं 15-20 लोग गन बचाने जाए। अब वहां पे अगर 1500 लोग हैं जो आपके सपोर्ट में चीयर कर रहे हैं, तो ये 15-20 जो है ना मेंढक की तरह निकल जाते हैं वहां से। ये जो है ना ये वो लोग हैं जो तभी चौड़े होते हैं कि जब ये मेजोरिटी में होते हैं और तब बोलते हैं कि हम खतरे में, हमारी सेंसिबिलिटी हर्ट होगी। जिस बात के ऊपर ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर मेरे ऊपर इन्होंने FIR करा के रखी हुई है, हैं कि रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट किया, हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया। हिंदू गॉड्स के बारे में बात ही नहीं थी सर।
अच्छा,
वो बात ये थी सिंपल सी कि हमने अपनी सोसाइटी में साइंस का पूरा फायदा उठाते हैं, ठीक है, हर चीज साइंटिफिक इस्तेमाल करते हैं, मतलब लाइक राम मंदिर भी जो बन रहा है उसके नीचे नदी का पानी निकल आया।
हाँ, बच्चों को तो भी हम IIT की तैयारी करवाते हैं, पुजारी बनने की
तैयारी करवाते हैं हम। आप उनको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और ये सब सिखाते हैं, और वो जो लॉग और एंटी लॉग टेबल पढ़ाते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर देते हैं, और उसके ऊपर जय श्री राम लिख दें या 786 लिख दें। तो मैं बोला, मैंने कहा यार मेरे को एक बात बताओ कि ये तो वही बात होगी जो एकता कपूर के सीरियल्स में है, जो बहुओं के साथ होती है कि उसको बुला लो अपने घर पे रख लो, दहेज ले लो और फिर बोलो उससे जो भी मिल रहा है वो तुम्हारे पास पहले से था। ठीक है, और मैंने बोला साइंस की हमने इतनी धज्जियां उड़ा रखी है। मैंने इस पे सर हिंदू में एक्चुअली एक आर्टिकल भी लिखा था कुछ साल पहले कि जो सोसाइटी रैशनल नहीं होती है ना, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ही होगा, बिकॉज रैशनल वॉइसेस विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। और अब क्या हो, निजाम हो रहा है ये सवाल ना पूछो। अगर मैंने ये बोल दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ये आके बोल रहे हैं साइंस कॉन्फ्रेंस में कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला है नरेंद्र मोदी ने कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, गणेश की। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, मैं मान गया तुमने करी होगी तो ठीक से तो कर लेते।
ओके,
तो अच्छा, तुम्हारे पास करवाने के
इस बात पे पूरा ऑफेंस हुआ और FIR वगैरह
इस बात पे। और मैंने बाद में ये भी बोला था कि अगर इंडिया इतना एडवांस था कि गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हो गई तो एकलव्य का अंगूठा क्यों नहीं लगा। वो लेकिन कन्वीनियंटली निकाल दी वो, क्योंकि एकलव्य दलित था।
अलग उसमें डिस्कोर्स चला जाता। कूल सर, यही सवाल थे आज के। बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए।
ओके सर, गुड नाइट।
थैंक यू, गुड नाइट।
गुड नाइट सर, गुड
नाइट। तो ये था आज का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के लिए कोई फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन या किसी भी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है conversations.anurag@anurag.com। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है अनुराग-वर्मा पेट्रियन पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट।